आयत नंबर 16 से लेकर 19 तक चार आयतें हैं जो जुमलाए मोतरिजा के तौर पर जो है वो आई हैं। जुमलाए मोतरिजा किसे कहते हैं? मसलन जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ और बाहर से कोई आए और सीढ़ियों से मुझे उनके बोलने की आवाज आ रही है और फिर वो ऊपर भी आके बोल रहे हैं, तो मैं उन्हें कहूँ कि खामोश हो जाए। पढ़ाते पढ़ाते मैं ये कहूँ, या ये कि रोशनी कम लग रही है तो मैं कहूँ ये लाइट ऑन कर दें, गर्मी लग रही है तो मैं कहूँ कि ये जो है ये पंखा ऑन कर दें, पंखा ऑन कर दें। तो अब क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते मैंने बीच में ये दो तीन बातें कही, या खांसी आ रही है या कुछ मुझे हो रहा है तो मैं कहूँ मुझे पानी दे दें, या बच्चों को ये जरा चुप करके बिठाएं और फिर मैं दोबारा उसी बात को करना शुरू कर दूं, तो उसको कहते हैं जुमला मुतरजा। तो इस सिलसिले में कि ये जो 16 से लेकर 19 तक चार आयात जो कि जुमला मुतरजा के तौर पर आई हैं, तो क्या है कि अहले मक्का ने किया कयामत का इनकार और इस्तेहजा मजाक और सूरत अल कयामा नाजिल होगी। कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है सूरत कयामा को लेकर जो है वो आ गए, नाजिल हो गई। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि जब कुरान नाजिल होता था तो ये भी जो है ये आप इसका रदीफ काफिया छोटी छोटी आयतें मक्की दौर की सूरत, इससे आप अंदाजा करेंगी कि मक्का के इब्तदाई दौर की नाजिल शुदा सूरतों में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही नाजिल होती तो आपको बड़ी फिक्र होती थी कि कहीं भूल ना जाऊं, कहीं मेरे जहन से हट ना जाए, और आपको पता ही है कि आपने ये कहा था मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो अब ये कि आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ने की कोशिश करते थे, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है, क्योंकि अल्लाह ताला मौलिम है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, शागिर्द थे, इल्म सीखने वाले थे, तो उनको बताया है कि शागिर्दी के आदाब क्या होते हैं। इस सिलसिले में बड़ी खूबसूरत एक हदीस है जिसे बुखारी ने रवायत किया है और इन आयात की तफसीर में आप उसको नकल कर सकती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं कि जब सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप पर वही लेकर आते तो आप जबान और लब हिलाते रहते कि कहीं भूल ना जाए, इससे आप पर बहुत सख्ती हो जाती जो दूसरों को भी मालूम हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई, यानी वही का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना हमारे जिम्मा है और इसका पढ़ा देना भी। तो जब भी हम पढ़ चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह पढ़ें जैसे हमने पढ़ा था, और जब तक वही उतरती रहे खामोश सुनते रहें, फिर वही के अल्फाज को आपकी जबान पर रवां कर देना भी हमारे ही जिम्मे है। चुनाचे इन आयात के नजूल के बाद जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते, और जब चले जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह पढ़कर सुना देते जिस तरह अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया होता। ये बुखारी की रवायत है। इससे क्या बात अमल के लिए हमारे सामने आती है कि उस्ताद जब पढ़ा रहा हो तो एक तालिब इल्म को खामोशी से जो है वो सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसको अखज करने की कोशिश करनी चाहिए। बाज तालिब इल्म क्या करते हैं, आपस में बोलना शुरू कर देते हैं कि क्या कहा, पहला तो मिस हुआ ही था अब दूसरा भी मिस हो गया, और फिर क्या होता है उस्ताद को इससे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उस्ताद की तवज्जो फिर उनकी तरफ जब होती है तो उसको लगता है कि पता नहीं क्या कोई गलती हो गई है, कोई कोई बात ऐसी हो गई है कि जो है ना खलल अंदाजी होनी शुरू हो जाती है। और क्या इससे होता है, इसके जरिए से जो है सबक सही तरीके से अखज नहीं किया जा सकता। तो तालिब इल्मी के आदाब में से क्या है, जब पहले दिन का लेक्चर था आगाज का तो उस वक्त ये बात कही थी फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह का, बड़ा खूबसूरत एक कॉल है और वो क्या है कि इल्म हासिल करने के 5 दर्जे हैं। पहला ये है कि इंसान खामोश रहना सीखे, दूसरा तवज्जो से सुने, तीसरा जो सुने उसको याद रखे, चौथा जो याद रखे तो उस पर अमल करे, और पांचवा ये कि फिर उसको फैलाए। तो हमारे यहां मसला क्या है कि आम तौर पे फिर होता क्या है कि कुरान की क्लास है, हदीस की क्लास है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं, कभी इशारों से, कभी आंखों से, कभी एक दूसरे को हिलाकर, जिससे पूरी क्लास जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो अगर कुछ लिखने से रह भी गया हो तो फिर हम नोट्स बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, और वैसे भी अब तो आपके लेक्चर वैसे वेबसाइट पर भी आ जाते हैं, और फिर जब सबक खत्म हो जाए तो उस्ताद से फिर भी पूछा जा सकता है। तो असल बात जो यहाँ पे हमारे सामने आती है कि क्या करना चाहिए कि तवज्जो से सुनना चाहिए। तो आइए अब इन चार आयात को इस पसे मंजर में समझते हैं। आप सोचें कि उस्ताद हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत और शागिर्द हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही लेकर आ रहे हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्रमंदी कि आप जल्दी जल्दी साथ साथ कहना शुरू करते थे ना, तो इससे ये बात भी पता चलती है कि तालबिल्म के अंदर बेचैनी पाई जाती है। वैसे तालबिल्म क्या चाहता है कि जल्दी जल्दी इसको बस आ जाए ना। कहा ला तो हर्रिक बही लिसाना का लिताजला भी, ला तो हर्रिक आप हरकत मत दीजिए, बही साथ इसके लिसाना का जबान अपनी। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही किसके लिए आया है? वही के लिए ना, कि ये जो वही आप पर नाजिल हो रही है इसको पढ़ने के लिए आप अपनी जबान को हरकत मत दीजिए, अपनी जबान को मत चलाया करें। अब आपने पढ़ना नहीं है इस वक्त, आपने क्या करना है? बस सुनना है। ये ताजला वही, ताकि तुम उजलत से इसको याद कर लो। वही की जमीर वही के लिए आई है, ताकि तुम इसको उजलत से जल्दी जल्दी याद कर लो। इन्ना अलैना जमअहु, बेशक हम ही पर है जमअहु इसका जमा करना, वकुरआनहु और पढ़वाना इसका। अब आप देख लीजिए कि यहां पर दो बातें जो हैं वो आई हैं, और पहली चीज ये है कि इसका इकट्ठा कर देना, इसका जमा कर देना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो क्या होता था, ये बहुत कुछ आपको बताया जाता था ना, बहुत सी आयात। और जमा के लफ्जी मानी होते हैं एक ही चीज के मुख्तलिफ अज्जा को या मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा किया जाए। जानदार भी ये चीजें हो सकती हैं, बेजान भी हो सकती हैं। तो जमा का लफ्ज जाहिरी और मानवी दोनों चीजों के इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन आयात को जमा करना और इन सूरतों को जमा करना और ये जो वही है इसको जमा करना, वकुरआनहु और इसको पढ़वा देना। किस पर है? इन्ना अलैना, ये हम पर है, ये हम पर फर्ज है। तो ये जो है ना कुरान, और आपको पता ही है कि कर उनसे है ये लफ्ज, और इसके मानी क्या होते हैं? इसके मानी होते हैं कि पढ़ना। और करा जो है ये पढ़ने के लिए पहला दर्जा है, पढ़ना पढ़ाना इसके लिए कुरान में पांच लफ्ज आए हैं। और करा के मानी होते हैं पढ़ना मताला करना, ये आम लफ्ज है। तहरीर भी हो सकती है, किताब भी हो सकती है, एक आधा लफ्ज भी हो सकता है। तो करुन जो है कहते हैं कुरान मजीद को बकसरत और बार बार पढ़ना। और कुरान के लफ्ज में मुबालगा पाया जाता है, जैसे गफारा से गुफरान, तो करुन से कुरान। तो कुरान को पढ़वा देना, पढ़ना पढ़वाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। फायजा करा ना हो, फिर जब हम इसे पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे पढ़ने से मुराद कौन है? यहाँ पे जो है अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कुरान भेजते थे ना, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब कुरान आपको पढ़कर सुनाते हैं, फायदा करा ना हो, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसको पढ़ रहे हो, फत्तबे कुराना, बस पैरवी कीजिए, बस गौर से सुनिए। फत्तबे का मतलब क्या है? गौर से सुनिए कुराना, हमारा जो है वो पढ़ना। अब यहाँ पे फत्तबे कुराना इसके मानी क्या है? कि फिर आप जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पढ़ने को जो है वो गौर से सुने। कुराना हूं इसके पढ़ने की तरफ, बस आप इसकी पैरवी करें इसके पढ़ने की तरफ, गोया के कुरान को तवज्जो से सुने। सुम्मा इन्ना अलैना, फिर बेशक हम पर है बयानहू, बयान करना इसका। तो कुरान जो है इसका बयान करना, इसका वाजे करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, आपको समझाया जा रहा है कि कुरान के नुजूल के वक्त आप परेशान हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले जाएंगे और मैं कहीं भूल ना जाऊं। तो आपके सीने में इसका जमा करना, आपकी जबान पर इसकी किरात को जारी कर देना हमारी जिम्मे है। इसका कोई हिस्सा आपकी जहन से, आपकी याददाश्त से बाहर नहीं निकलेगा, आपके जहन से महव नहीं हो जाएगा। तो इससे जो है वो लोग जो ये कहते हैं कि कुरान मजीद जो है ये बाद में लिखा गया और इसके बारे में शक करते हैं, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है दलील क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम इसे पढ़ रहे होते हैं, जब जिब्राइल पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं। इन्ना अलैना जमअहु वकुरआना, फ़ाइज़ा करा ना हु फत्तबे कुरआना, इन अलैना बयाना। तो पहली बात ये पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में तेजी तेजी से जो कुरान पढ़ना चाहते थे, याद करना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फिक्र ना करें, कुरान नाजिल भी हम ही कर रहे हैं और इसके हर हुक्म और मंशा को, मुद्दा को हम पूरी तरह आपको समझा देंगे। फिर दूसरी बात हमें यह भी पता चलती है कि मुफस्सरीन ये कहते हैं कि सिर्फ कुरान की आयात ही नहीं आप पर नाजिल हुई बल्कि जो है इसका फहम भी आप पर नाजिल किया गया, उसको समझाना और उस पर कैसे अमल करना है, इसके जो है वो क्या अहकामात और फरामीन है, ये सारे जो है वो अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा दिए। और आप कितना ज्यादा जो है आप असर लेते थे, तो वही खफी और जल्दी दोनों फिर इससे मुराद है। फिर तीसरे इसके ये मानी भी बयान किए जाते हैं कि जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसके अहकाम की तशरीह खुद बताई ताकि अपने कौल और अमल से लोगों को बता सकें। जैसे सूरत नहल की आयत 44, वानजलना इलैक जिक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम। और फिर इससे ये बात भी पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम उम्मत मुस्लिमा को दी तो अल्लाह ही ने आपको बताई थी ना। तो वो लोग जो हदीस का इनकार करते हैं या हदीस जो है इसके सिलसिले में समझते हैं कि इसकी इतनी अहमियत नहीं है, तो ये चीज गलत है, क्योंकि मुफस्सरीन कहते हैं सुम्मा इन्ना अलैना बयाना हूं, इसके मानी क्या है कि कुरान की वजाहत करना और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। फिर आप देखिए कि अब यहां पर जो है एक और अहम हकीकत जो है उसको बताया जा रहा है, आयत नंबर 20 से लेकर आयत नंबर 30 तक। क्या बताया अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि दुनिया में इंसान जो कुछ करता है तो इंसान के अमल के मुताबिक जो है लोगों के जो है वो दो जो है वो अंजाम होंगे। दुनिया में दो किरदार हैं तो वहां पे दो तरह के जो है वो अंजाम होंगे। पहला अंजाम क्या है, कल्ला बल तुहिब्बून अलआजिला वतज़रून अलआखिरा। तो सबसे पहले दुनिया की जिंदगी को दो आयतों में बयान किया गया है, हरगिज नहीं बल्कि तुम आजिला से मोहब्बत करते हो। दुनिया का एक नाम क्या है, आजिला, और जो है वो आजिला उजलत से है, जल्दी, तुम लोग जल्दी हासिल होने वाली चीज यानी दुनिया से मोहब्बत करते हो। और चाहिए आजिला क्या है कि इंसान अगर किसी को तोहफा देता है तो ये चाहे कि मुझे भी इसके बदले में तोहफा दिया जाए, तो ये आजिला है। तो ये नियत ना करना, तो वैसे ही कोई दे दे तो कोई बात नहीं, आपस में तो जो है तहादु तहाबू तोहफों के लेन देन से मोहब्बत होती है, लेकिन ये नियत करना कि मैंने इसको राइट दिया कल ये मुझे भी राइट देगी, आज मैं इसके बच्चे को लेकर आई हूँ स्कूल से कल ये मेरे बच्चों को लाएगी, आज मैंने आदत किया कल ये मेरी आदत करेगी जब मुझे जरूरत पेश आएगी, आज मैंने खाना दे दिया इसकी मुश्किल में कल ये मुझे खाना देगी जब कभी मुझे जरूरत पेश आएगी। तो ये नियत कर लेना क्या है कि दुनिया ही में ये नियत करना कि जिसके साथ मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, जो उसने सलूक कर रही हूँ, मुझे दुनिया में मिल जाए, इसको आजिला कहते हैं। लेकिन जो भी करें तो क्या करें, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके उसको भूल जाएं कि मैंने फलां के साथ कभी कोई नेकी भी की थी, तो क्या करें, नेकी करके उसको भूल जाएं। लेकिन इंसान की फितरत क्या है कि वो आजिला से मोहब्बत करता है, जल्दी हो हासिल होने वाली चीज, और दुनिया सारी की सारी दुनिया को आजिला कहा गया है। अच्छा, इसके एक मानी ये भी है कि इंसान जो है हराम जो है ना उस पर राजी हो जाए, हलाल की बजाय हराम पर राजी हो जाए। क्यों, हराम तो बहुत ज्यादा मिल रहा है ना हर तरफ और जल्दी जल्दी मिल जाता है। अब आप देखें कि हलाल गोश्त आप जो लाती हैं तो हराम की सेल कैसी जबरदस्त लगती है, वो सस्ता होता है, हलाल महंगा होता है। अब बाज लोग हलाल हराम की तमीज ही नहीं करते, हर जगह मैकडोनल्ड है, किंग बर्गर है और दूसरा तीसरा बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट और चीजें खुली हुई है कि तमीज ही कोई नहीं है। तो अब क्या है, बहुत से लोग जो हैं बस फौरन फौरन कहते हैं कि खुशबू आ रही थी और इतनी कौन अब झंझट करे अब जब यहां आ गए। और फिर बाज़ अवकात लोग क्या करते हैं, जैसे कारोबार करना चाहते हैं, अब कारोबार के लिए इस बात की तमीज नहीं करते कि पैसा हलाल है कि हराम, बैंक से ले रहे हैं, और फिर ये भी नहीं कि कारोबार कैसा है, हलाल है कि हराम है। सुअर के सैंडविच, पिक के सैंडविच भी रखे हुए हैं ग्रोसरी स्टोर्स में, और लॉटरी भी जो है वो रखी हुई है, और फिर कारोबार में जो है यानी काम बजाते खुद जो है जुआ जो है ये काम है, डाकू डाका डालता समझता ये भी मेरी एक जॉब है, मेहनत करता हूँ, ताजिर मेहनत करता है, मैं भी मेहनत करता हूँ, और बाज डाकू और चोर ये कहते हैं कि ये भी एक फन है जिसको हमने अब इख्तियार कर लिया और सीख कर किया, ऐसे थोड़ी कर लिया। तो लोग क्या करते हैं, हलाल हराम की तमीज नहीं करते। और अब इसमें जो ताजिर और वो हलाल तरीके से माल कमाए और गलत हथकंडे इख्तियार ना करे, ना मिलावट कर रहा है, ना धोखा दे रहा है, ना चीट कर रहा है, हलाल हराम की तमीज करता है, तो ऐसा ही नहीं है कि ताजिर जो है वो अर्श के साए के नीचे उसको जगह मिलेगी। तजारत करने वाला इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह की वो बात कि मैं ये पसंद करता हूं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह के बाद अगर मुझे मौत आए तो किस हाल में कि मैं रिज़्क़े हलाल की तलाश में जा रहा हूं, किसी घाटी में मुझे मौत आ जाए। तो रिज़्क़े हलाल की तलाश को रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, अलकासिबु हबीबुल्लाह, वो जो है वो अल्लाह का दोस्त है। तो ये बहुत सब्र की बात है कि आजिला नहीं अगर हलाल जराए से पैसे पास तो फिर कोई बात नहीं, फिर सूद पर घर ना लिया जाए। तो यहां पे क्या है, हर दूसरा शख्स ने सूद पर घर ले रखा है, हर दूसरे शख्स ने सूद पर घर ले रखा है, तो क्या उजर है, क्या बहाना है, क्या बात कहेंगे। बल क्या है कहा, कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला, बल्कि असल बात यह है कि तुम जल्दी हासिल होने वाली चीज दुनिया से मोहब्बत करते हो, वतज़रून अल आखिरा, और आखिरत को छोड़ देते हो। तो आखिरत को छोड़ने का मतलब क्या है कि जो बाद में सिला मिलना है, आखिरत में जो अजर मिलना है, आखिरत में जो फायदा और लज्जत और खुशियां मिलने वाली हैं, नतीजा आखिरत में मिलने वाला है, उसके लिए तुम तैयार ही नहीं हो। सब कुछ हम यही करना चाहते हैं। आप देख लें बेसब्री क्यों आ जाती है, आजिला से आजिला चाहते हैं, ना शुक्री क्यों करते हैं, आजिला चाहते हैं, औरतों के रवैयों में ना शुक्री क्यों पाई जाती है, बदजबानी क्यों करते हैं, लड़ते झगड़ते क्यों हैं, रिश्तेदारों से कतार रहमी क्यों कर लेते हैं, नाराज क्यों हो जाते हैं। सिला रहमी तो है ही ये कि जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम्हें अता करे तुम उसको अता करो, क्यों कतार रहमी करते हैं। बर्दाश्त नहीं होता कि रिश्तेदार तो उसने सलूक कर नहीं रहा और मैं कैसे करूं, फिर दुनिया में हिसाब बेबाक करना चाहते हैं, ताजा ताजा सारी चीजें, बल्कि तुम आखिरत से आखिरत को छोड़ देते हो, दुनिया से मोहब्बत करते हो। तो क्या है कि एक रवैया ये है कि दुनिया ही चाहना, और दूसरा रवैया क्या है कि दुनिया की बजाय आखिरत जो है वो मुतमय नजर बन जाए, गोल बन जाए। और ये रसूल अल्लाह का था, सहाबा का था, सहाबियात का था, दुनिया में रहे और आखिरत के लिए जिए। वजूह हुई यौमइज़िन नादिरा, उस दिन कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, रौनक वाले होंगे। तो नून दुआ रा जो है ये तरोताजगी को कहते हैं, जैसे सब्जी ताजा होती है, फल ताजा होता है, और या चेहरे बाज़ुकात बड़े तरोताजा होते हैं, तो चमकना, चेहरों का चमकना। तो उस दिन वो लोग जिन्होंने आजला की बजाय आखिरत से मोहब्बत की, हलाल को इख्तियार किया, हराम को छोड़ दिया, कतर रहमी की बजाय सिला रहमी की, लोगों से उसने सलूक किया, सारी जिंदगी अल्लाह की अताअत करते रहे, तो ये वो लोग हैं जो के उस दिन जो हैं उनके चेहरे चमक रहे होंगे, तरोताजा शादाब, उनके चेहरे उतरे हुए नहीं होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। अब आप देखें कि कभी इंसान किसी की तरफ देखता है, जैसे बच्चा मां से एक मुतालबा करता है कि मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे मैकडोनल्ड ले चलें, मुझे भी सिक्स फ्लैग ले चलें, हमें भी पाकिस्तान जाना है और हमें खेलने जाना है, मुतालबा करता है। फिर क्या करता है, मुतालबा करके अपनी मां से तवक्को रखता है और उसके फैसले का इंतजार करता है, उसके कर्म का उम्मीदवार बन जाता है। तो कभी तो किसी की तरफ देखना, उसके फैसले का इंतजार करना होता है। जैसे एक अंधा भी ये कहता है कि मेरी निगाहें तो फलां शख्स की तरफ लगी हुई हैं कि वो मेरे लिए करता क्या है, और कभी किसी की तरफ देखना क्या है कि उसको वाकई देखना, उसका दीदार करना। तो अब यहां पर जो है कि वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, इसके मानी क्या है? मुफस्सरीन ये कहते हैं कि अहले ईमान के चेहरे अपने हुस्ने अंजाम की वजह से मसरूर होंगे, खुश होंगे और दीदारे इलाही जो है कर रहे होंगे, दीदारे इलाही कर रहे होंगे। तो फैसला हो चुका होगा। अब क्या है, मिजाजी मानी नहीं है, हकीकी मानी है कि वो अल्लाह को देख रहे होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इनसे पूछेगा क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें मजीद कुछ दूं? वो अर्ज करेंगे कि आपने हमारे चेहरे रोशन नहीं कर दिए, क्या आपने हमें जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया और जहन्नुम से बचा नहीं लिया? इस पर अल्लाह ताला पर्दा हटा देगा और उन लोगों को जो कुछ इनामात मिले थे उनमें से कोई इनाम भी उन्हें इनसे ज्यादा महबूब नहीं होगा, इससे ज्यादा महबूब ना होगा कि वो अपने रब की दी से मुशर्रफ हों। और यही वो मजीद इनाम है जिसे कुरान में जो है सूरत यूनस आयत 26 में कहा गया, लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। बुखारी और मुस्लिम से हमें क्या बात पता चलती है? ये जो मैंने रवायत आपको सुनाई ये भी बुखारी की है और एक और रवायत है बुखारी और मुस्लिम की कि लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? हुजूर ने फरमाया क्या तुम्हें सूरज और चांद को देखने में कोई दिक्कत होती है जबकि बीच में बादल भी ना हो? लोगों ने अर्ज किया नहीं। आपने फरमाया इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे। तो इससे क्या बात पता चलती है कि क़यामत के दिन जब हिसाब किताब हो जाएगा और मोमिनीन जन्नत में चले जाएंगे तो वो अपने रब को देख रहे होंगे। और आप देखेंगे दुनिया में भी अपने प्यारों को देखने को बड़ा दिल जाता है। बाज़ तालबिल्म जो ऑनलाइन पढ़ते हैं और एक तालबिल्म की बेचैनी का यह हाल कि बस उस्ताद से मिलना चाहती हूँ, उसको देखना चाहती हूँ, उसके घर आके रहना चाहती हूँ, आवाज सुनी हुई चेहरा नहीं देखा और देखने को दिल चाहता है कि वो है कैसा। फिर क्या है कि अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां पूरी दुनिया में बिखरी पड़ी हैं। अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्थ। तो अनदेखे रब से जिन लोगों ने मोहब्बत की, जब उनको जन्नत मिल गई, अब जो है जन्नत की नेमतों की तकमील जो है वो होगी कि जब उनको दीदार इलाही होगा। तो ये जन्नत की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है कि लोगों को जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा और ये सुरूर है, दीदार इलाही का सुरूर है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो चेहरे चमकेंगे और ये चेहरे तरोताजा होंगे, चेहरों पर एक नूर होगा, तो असल में ये जो चेहरों पर कैफ और सुरूर की हालत है जो जन्नतियों की, ये दरअसल अल्लाह ताला के दीदार की वजह से है। आप देखेंगे कभी आप जो है किसी चीज को देख रहे होते हैं तो क्या होता है कि अगर आपका दिल खुश होता है तो चेहरे पर भी एक रौनक और ताजगी होती है। तो ये उसी कैफियत जो है उसको आप महसूस करें। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुआ भी मांगा करते थे। क्या दुआ मांगा करते थे? कि अल्लाह तू मुझे अपनी मुलाकात का शौक दे। और क्या कहते थे? कि मेरी नजर को जो है वो अपनी मुलाकात की, अपनी दीदार की जो है उसको लज्जत दे दे, एक शौक होना, एक बेकरारी होना। और आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम को कितना शौक था कि उन्होंने मुतालबा किया कि अल्लाह तू मुझे दिखा अपने आप को ना, और उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा था कि मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहे तभी आप देख सकते हैं वरना नहीं देख सकते। अब एक तरफ जो है बताया जा रहा है कि जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी की उस दिन वो तरोताजा भी होंगे उनके चेहरे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे गोया के जन्नत में। अब दूसरा एक किरदार है, वजूह यौमा, वजूह उनका वाहिद क्या है? वजूह चेहरे को कहा जाता है और पूरे जिस्म में से सबसे नुमाया चेहरा होता है। तो उस दिन चेहरे जो हैं कैसे होंगे? बासिरा, बासीन रा। और इसके मानी होते हैं, आपने पीछे भी पढ़ा था कि बासिरा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ था और किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? कि चेहरा जब बिगड़ जाता है, अबासा, एक आपने अबासा लफ्ज पढ़ा था, एक कलेहा पढ़ा था और तीसरा लफ्ज क्या पढ़ा था? बासिरा, बसारा। और फिर बसरा किसे कहते हैं, क्योंकि मुफस्सरीन जो हैं बसरा के बारे में ये बात बताते हैं कि बा सीन रा इसके मानी हैं क्या करना, कि ऐसे अबसा है कि माथे पर त्यूरियां पड़ना और बसरा है कि पूरे चेहरे पर, तो बसरा के मानी है कि पूरे चेहरे का बिगड़ जाना, चेहरे का खराब हो जाना। वजूही यौमाइज़िम बासिरा, और उस दिन को चेहरे जो हैं वो बिगड़े हुए होंगे। और इस सिलसिले में मुफस्सरीन जो हैं वो ये भी कहते हैं कि चेहरा जो इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा नुमाया है, लेकिन कयामत के दिन चेहरे उतरे हुए होंगे, चेहरे बिगड़े हुए होंगे, चेहरे जले हुए होंगे, चेहरे खराब होंगे, बहुत ही उनकी चेहरों की जो है वो बुरी हालत होगी। बा सीन रा का लफ्ज जब इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे ही नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि शिद्दत का एहसास दिलाने के लिए, और पूरे जिस्म पर कहीं भी निशान हो तो इंसान इतना उदास नहीं होता जितना चेहरे पर निशान के जो है वो वाकया होने से होता है। बा सीन रा के मुफस्सरीन ये मानी भी बताते हैं कि किसी चीज को कबल अज वक्त जल्दी ले लेना, और जो है वो बसरा के मानी होते हैं माउन बुसरुन, बारिश का ताजा पानी जो जमीन पर गिरने से पहले ही ले लिया जाए। फिर इसी तरह बोसर अल करह, फोड़े को पकने से पहले फोड़ देना। अब फोड़ा पका नहीं है, उसको पहले ही अगर फोड़ दिया जाए तो क्या होता है, खराब हो जाता है। इसी तरह तुम अबसवा बसर, फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ लिया। आपने पीछे सूरत मुदस्सिर में पढ़ा है ना, तो क्या था उसका के मुंह बिगाड़ लिया। अब यहां पे कहा जा रहा है कि चेहरे उनके जो है वो बिगड़े हुए होंगे, खराब होंगे। वजू हुई यौमाइज़िम बासिरा तज़ुन्नुई युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, और समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ बरतो होने वाला है। तज़ुन्नु के बाद अन आ गया, तो क्या है कि अब उनको यकीन हो जाएगा कि अब उनके साथ जो है वो कमर तोड़ बरताव जो है वो होने वाला है। और ये फाकिरा फाकाफ रा से है, इसके मानी क्या होते हैं, इसके मानी होते हैं कि जैसे फकर से है, फकर किसे कहते हैं, गुर्बत को, नादारी को। अच्छा, गुर्बत और नादारी क्या करती है, फकीर जो है उसकी कमर तोड़ देती है। फाकिरा इसके मानी है कमर तोड़ देने वाला। फाकिरतुन ऐसी मुसीबत को कहते हैं जो रीढ़ की हड्डियों को तोड़ देने वाली हो, आम मुसीबत नहीं, ऐसी मुसीबत जो रीढ़ की हड्डियों को तोड़ दे। अब आप देखें, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, जिस्म के और हिस्सों की हड्डियां टूटें तो इतना मसला नहीं होता, जब रीढ़ की हड्डी ही टूट जाए तो फिर क्या होता है कि फिर जो है इंसान खड़ा ही नहीं रह सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह आप देखें कि ये कार्डियक अरेस्ट जब होता है क्या किया जाता है, उस वक्त सीने पर जोर जोर से मारा जाता है, फिर क्या होता है कि पसलियां ही टूट जाती हैं। तो बात सिर्फ रीढ़ की हड्डी के टूटने की नहीं है कि उनके साथ कमर तोड़ बरतो होने वाला है, क्योंकि एक तो वाकई कमर टूट जाए, और एक ये होता है कि बाज़ुकात आप कहते हैं कि मेरी जो है एक जवान आदमी कहने लगा, जवान बेटी की डेथ हुई तो कहने लगा कि इस मुसीबत ने मेरी कमर तोड़ दी है, तो मुहावरा भी इस्तेमाल किया जाता है ना कि दिल जो है बिल्कुल इंसान का कट कर रह जाता है। वो समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ बरतो होने वाला है। कल्ला इज़ा बलगत तराक, हरगिज नहीं जब जान हलक तक पहुंच जाएंगी। तराक राकाफ या से है, और इसके दो मानी बयान किए जाते हैं। एक तो ये रुकिया से है जिसके मानी होते हैं तावीज, गंडे और झाड़ फूंक के। रुकिया का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है झाड़ फूंक के लिए, जैसे किसी पर पढ़कर जो है वो फूंका जाए, झाड़ा जाए। और दूसरे इसके मानी होते हैं रकिया राकाफिया से, जिसके मानी होते हैं चढ़ना चढ़ना। तो अगर ये मानी लिए जाए कि कल्ला इजा बलगत तराक, के हरगिज नहीं, जब जान हलक तक पहुंच जाएगी तो होगा क्या? उस वक्त जो है ऐसा नहीं होगा कि जो है कोई झाड़ फूंक करने वाले पास जमा हो और फिर उसकी जान को बचा लिया जाए। तो मानी ये है कि आखिरी वक्त जब मरीज बीमार बीमार है, मरीज है, अब हर तरह की दवा दारू से लोग मायूस हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर दम दारू या झाड़ फूंक जो है उसको तलाश किया जाता है कि कोई है जो इस पर आके कोई दम कर दे, शायद मुश्किल इसकी आसान हो जाए। दूसरे इसके मानी ये बयान किए जाते हैं कि जब जान हलक तक पहुंच जाती है तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे कि इस रूह को किसे लेकर जाना है। इज़ा बलगत तराक, के जब जान हलक तक पहुंच गई, क्योंकि जान कहां से निकलती है? पांव से निकलती है ना, सबसे पहले पांव से निकलती है, फिर टांगों से, फिर पेट, फिर यहां तक के यहां गले पर आ जाती है। अब गले पर जब आ गई तो अब फरिश्तों ने इस जान को पकड़ना है, रूह को और ले जाना है। अब उस वक्त जो है मलाइका रहमत समझते हैं कि हमने लेकर जाना है, और मलाइका जो अजाब है वो समझते हैं हमने लेकर जाना है। तो ये है बात कि उस वक्त फरिश्ते आपस में कहेंगे कि इस रूह को किसे लेकर जाना है, मलाइका अजाब को या मलाइका रहमत को, किसे लेकर ऊपर चढ़ना है। एक मानी है झाड़ फूंक करने के, रुकिया के, दूसरे मानी है ऊपर चढ़ने के, कि कौन इन्हें लेकर चढ़ेंगे, ये इंसान बद था या नेक था, मलाइका रहमत या मलाइका अजाब, कौन इन्हें गिरफ्तार करेंगे। वकील अमन रॉक, उस वक्त कहा जाएगा है कोई झाड़ फूंक करने वाला, है कोई झाड़ फूंक करने वाला, या फिर ये कौन इसे लेकर जाएगा। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, सारी बात का जो है ना ये निचोड़ है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और आदमी समझ लेगा ये दुनिया से जुदाई का वक्त है। इसके दो मानी बताए जाते हैं कि दुनिया से जुदाई किस चीज की, उस वक्त इंसान को यकीन आ जाएगा कि जान हलक तक पहुंच गई है। एक तो इस बात से वो परेशान होगा कि सारी दुनिया जो है अब मैं उसको छोड़ रहा हूं, वो दुनिया जिससे मोहब्बत की और आखरत को भूला रहा और अल्लाह के पास जाने की तैयारी ही ना की, मौत को भूला रहा और अमले सवाले किए ही नहीं, अब मौत सर पर खड़ी हो गई है, जान गले की हंसली पर आकर फंस गई है। तीमारदार लोग जो हैं दवा और इलाज से आजिज होकर झाड़ फूंक करने वालों को तलाश करने लगे हैं, और अब पता चल गया कि अब है अल्लाह के पास जाने का वक्त। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, दुनिया को छोड़ देने का वक्त। दूसरा फिराक किस चीज का, जुदाई किस चीज की। दूसरा जो है किस बात का डर है कि अब सबसे जुदाई है, ना दोस्त, ना माल, ना रिश्तेदार, कोई भी पास नहीं है, अब तो जुदाई का वक्त है, अब तो हिसाब किताब का वक्त है, कोई काम नहीं आएगा। वल्तफत साक बिसाक इला रब्बिका यौमइज़िन अल-मसाक, और जुड़ जाएगी, और वल्तफत इसके मानी होते हैं लपेटना, लामफाफा, इसी से लिफाफा भी है, उर्दू में भी आप इस्तेमाल करती हैं कि आप जब किसी चीज को लपेटती हैं तो क्या करती हैं कि उसको इकट्ठा कर लेती हैं, उसको बिल्कुल समेट देती हैं। और यहां पे ये जो लपेटना लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लफा लामफाफा, एक चीज को दूसरी के साथ मिला देना, मुदगम कर देना, एक चीज की तह लगाना, फिर इसके ऊपर दूसरी चीज की तह लगाकर मिलाना, फिर इसके बाद इसके ऊपर तीसरी तह को लगाना। वैसे तो लफीफ या लिफाफा इसके मानी होते हैं कि एक के साथ दूसरी चीज मिलाना, लेकिन जब लफा आ जाए, शद है फा पर, वल तफा है ना, तो लफा आ जाए या फिर इल्तफा आए, तो मुफस्सरीन कहते हैं कि एक चीज पर इस तरह तय पर तय लगाना कि एक चीज दूसरी चीज के का जो है वो उसके साथ लगकर चिमट जाए, बिल्कुल साथ जुड़ जाए। साक बिस्साक, तो साक क्या है, ये सीन मौकाफ, और किसे कहते हैं, पिंडली को कहते हैं। पिंडली से हम क्या करते हैं, चलते हैं। सूक बाजार को भी कहा जाता है ना, कि पिंडली जो है हमारी टांगे खुद ही बाजार की तरफ भागी चली जाती हैं, है ना। दरख्त के तने के लिए भी यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसके यहां पे मुफस्सरीन ने दो मानी बयान किए हैं कि पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी तो मरने के वक्त जब टांगे सूख कर एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, और मुफस्सरीन कहते हैं कि शिद्दत सख्ती और मुसीबत के वक्त जो है अरब के लोग ये मुहावरा बोला करते थे, जब उनके पास दो मुसीबतें जमा हो जाती थी या जब वो बड़ी ही मुसीबत और परेशानी के वक्त होते थे तो उस वक्त ये लफ्ज जो थे वो इस्तेमाल किया करते थे। तो साख क्या है, शिद्दत अमर, सख्त मुसीबत का वक्त, सख्त परेशानी का वक्त। तो पिंडली से पिंडली लिपटने का मतलब ये है आदमी चल भी नहीं सकेगा, कमजोर भी होगा, बेबस भी होगा। अभी पिछले दिनों मैंने सुना कि बाथरूम में कोई बहन गई और बैठी भी थी और वहीं उसकी जो थी वो जान निकल गई। उसने अपने आवाजें दी और बच्चे सो रहे थे और वो भागे भागे आए और मां की जो ना उसी हालत में जान निकल गई। और आप देखें कि क्या बात पता चलती है कि वही टांगे जिससे इंसान अकड़ कर चलता था, वही टांगे जिससे इंसान भागा करता था। दुनिया में भी ऐसा होता है कि जवानी में कितने काम करते हैं, फिर एक वक्त ऐसा होता है काम नहीं होता, आप कहते हैं बुढ़ापा आ गया है।